कारण है और हमारा मन ही मुक्ति का कारण है। मन एव मनुषाणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। उस आत्मा का सत्ता लेकर बुद्धि और बुद्धि की सत्ता लेकर मन और मन की सत्ता लेकर इंद्रियां जब काम में क्रोध में लोभ में मोह में मद में मात्सर्य में विचरण करती तो ये बंधन का कारण बना लेती और इंद्रियां धीरे धीरे अंतर्मुख होकर मन के तरफ मन बुद्धि के तरफ और बुद्धि उस परमात्मा के तरफ जब झुकती है तो मुक्ति का कारण हो जाता है। तीन प्रकार के ज्ञान माने गए हैं, इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान और वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान वो आत्मा परमात्मा का जो मन के बदलने को बुद्धि के बदलने को इंद्रियों के बदलने को जानता है वह साक्षी वास्तविक ज्ञान स्वरूप है। वही चैतन्य स्वरूप है, उसी को अकाल पुरुष कहा। वह योनियों में नहीं आता, उसको दिव्य ज्ञान भी कहते, अद्भुत ज्ञान भी कह दो, जो भी कह दो, वास्तविक ज्ञान कह दो। दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान। बुद्धिगत ज्ञान परिणाम का विचार करता है। मैं घर से चला, रास्ते में चाट देखी, लेके खा दी, तो ये बुद्धि का उपयोग नहीं किया कि खाने से क्या होगा। अभी दूध पिया, दो घंटे हुए, चाट खाया तो शरीर में कोढ़ के दाग पैदा हो जाएंगे। बुद्धिगत ज्ञान का अगर मैं आदर करूंगा तो रास्ते में देखा चवाना भेड़ से, लूं कि न लूं, अच्छा ले भी लेना जरूरी है तो ले लिया, लेकिन अभी नहीं खाऊंगा, पहले का खाया पिया पच जाए, बाद में शुद्ध करके पवित्र भाव से पवित्र जगह पे खाऊं, तो ये मैंने बुद्धिगत ज्ञान का आदर किया। मेरे पड़ोस में कोई लड़की है और मैं कॉलेज पढ़ रहा हूं और हमारा उस लड़की के साथ मन लग गया, लड़की का मेरे साथ लग गया, तो बुद्धिगत ज्ञान का आदर करेंगे तो मैं अपने पिता को कहूं, वो अपने माता को पिता को कहे, हम दोनों धीरज रखें, संयम रखें, अपने माता पिता को रिझाएं कुल धर्म के अनुसार शादी करें और संयम से संसार में रहे, तो ये बुद्धिगत ज्ञान का आदर हुआ परिणाम का विचार करके। लेकिन मेरा उस पर मन ढुला, उसका मेरे पर मन ढुला, या तो मैं उसको लेके भाग गया या तो वो मेरे को लेके भाग गई और कर लिया लव मैरिज और बाद में झगड़ते झगड़ते फिर डाइवर्स भी दे दिया, ये बुद्धिगत ज्ञान का अनादर है, इंद्रियगत ज्ञान की लोलुपता है। तो इंद्रियगत ज्ञान आंख रूप दिखा देगी, नाक सुगंध दिखा सुंगा देगा, कान शब्द सुना देगा, जीभ स्वाद दिखा देगी, त्वचा ठंडा और गर्म महसूस करा देगी, लेकिन उसमें बुद्धिगत ज्ञान का आदर होगा तो अगर संपत्तिवान है धनवान है तो मुझे ठंड लगती तो औरों को भी ठंड लगती है। मेरे संपत्ति का, मेरी अकल का औरों की ठंड निवारने के लिए या औरों की भूख मिटाने के लिए, औरों के दुख दूर करने के लिए मेरी योग्यता का मैं सदुपयोग करूंगा। अगर मैं गरीब हूं कंगाल हूं तो मुझे दुख सुख सहने की आदत बढ़ानी चाहिए। विदुर जी कहते हैं उन दो व्यक्तियों को पत्थर बांध के डूब मरना चाहिए या तो उनको डुबा देना चाहिए। जो धनवान है और फिर भी सत्कर्म नहीं करता और दूसरों के आंसू नहीं पहुंचता उसको भी पत्थर बांध कर डूब मरना चाहिए। और जो निर्धन है और दुख सहने की आदत नहीं डालता उसको भी पत्थर बांध के डूब मरना चाहिए। निर्धन को सही सूंथ होने में सहजता हो जाएगी और धनवान को दूसरों के आंसू पहुंचने में सुविधा होगी। जिसके पास धन है, योग्यता है, वो दूसरों के दुख दूर करने के कार्य के द्वारा अपना कल्याण कर सकता है और जिसके पास धन और योग्यता नहीं वो दुख सहकर तपस्या में बदलकर अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन इंद्रियों के आकर्षण में निर्धन भी बह जाता है, धनवान भी बह जाता है, तो आत्मा की अधोगति हो जाती है। लेकिन बुद्धिगत ज्ञान का आदर करता है तो इंद्रियों को ठीक मार्ग से चलाता है। फालतू खाता नहीं, फालतू देखता नहीं, फालतू सुनता नहीं, फालतू समय गंवाता नहीं है, भोजन तो करता है लेकिन औषध की नहीं, व्यवहार तो करता है लेकिन जरूरी है, बाकी का समय वो बचा लेता है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य इसी जन्म में उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को श्रवण कर लेता है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य उस इसी जन्म में उस ब्रह्म परमात्मा के सुख के रास्ते कदम रख लेता है। जैसे अति लोभी आदमी धन का दोष नहीं जानता, ऐसे ही अति स्वार्थी, अति लोभी और निगुरा आदमी धर्मादा के धन में कितना दोष है वो नहीं जानता है। किसी की सात पीढ़ी बर्बाद करना हो तो उसको धर्मादा का धन हड़प करने की आदत सिखा दो, सात पीढ़ी कंगाल हो जाएगी। सात सात पीढ़ी, एक पीढ़ी नहीं, सात सात पीढ़ी। और किसी की सात पीढ़ी चमकाना हो तो धर्मादा की वस्तुओं का सदुपयोग करके, अपने बुद्धि का सदुपयोग करके आप और दूसरों को सत्य स्वरूप ईश्वर में प्रीति करवाना सिखा दो, उसकी साथ साथ पीढ़ियां कर जाएगी, उसका भला हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, उसके द्वारा दूसरों का भी मंगल होगा। हरिसम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। भगवान के समान इस नश्वर जगत और भोगों की क्या कीमत है? भगवतीय सुख के आगे, भगवतीय ज्ञान के आगे, भगवतीय आनंद के आगे और भगवान के वास्तविक व्यापक स्वरूप के आगे इस जगत की उपलब्धियों की तो कोई कीमत ही नहीं है। कितना भी पा लिया, थान लिया, ये केवल मन में होता कि इतना मेरा, इतना मेरा। नहीं था तब भी तुम थे, और ये सब एक दिन नहीं हो जाएगा तब भी तुम रहोगे, तो तुम्हारे में तो कोई बढ़ोती घटोती नहीं हुई। केवल कल्पना में हुई कि इतना मेरे पास संपत्ति आई, और फिर कल्पना हुई कि इतना सारा मेरा धन चला गया। तो तुम धनवान भी कल्पना की दुनिया में होते और निर्धन भी कल्पना की दुनिया में होते। तुमने कुर्सी पाली, बड़े नेता हो गए, बड़े नेता होने के पहले भी तुम जो थे, और कुर्सी चले जाने के बाद भी तुम रहोगे, तो ये बीच में कल्पना आ गई, मैं बड़ा नेता हूँ, बड़ा धनवान हूँ, बड़ा दुखी हूँ, बड़ा सुखी हूँ। ये सुखी और दुखी इंद्रियगत ज्ञान को सत्बुद्धि देते, इंद्रियगत ज्ञान में सत्यपना आ जाता है, इसलिए कल्पित सुख दुख हमारे को दबोच देता है। तो इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान के बीच में मन है, झुक के खाता है। कभी तो इंद्रियों की हां में हां करके बुद्धि से सिग्नेचर करा लेता है और फिर छटपटाता है, और भीतर से फिर निर्णय होता है कि गलती किया, अच्छा नहीं था, लेकिन यार क्या करें, गलती हो गई। ऐसा एक बार नहीं और एक व्यक्ति नहीं, अनपढ़ नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, भल भले से होता रहता है। जब इंद्रियगत ज्ञान के आकर्षण में बहता है मन, बुद्धि को फुसला लेता है, जो कमजोर बुद्धि होती तो फुसली जाती, इसलिए बुद्धि को बलवान बनाने के लिए भगवान सूर्य उत्तरायण की ओर चल रहे हैं। आज से ही संकल्प करो कि हे बुद्धि के अधिष्ठाता देव, तुम्हारी शौर्य शक्ति, तुम्हारी रोग प्रतिकारक शक्ति मेरे तन को पुष्ट और तंदुरुस्त करे, और तुम्हारी ही आध्यात्मिक शक्ति मेरी मति को दृढ़ता दे, ताकि मन के चक्कर में ना आए, मन को भी इंद्रिय संयम करके चक्करों से पार करने के लिए परब्रह्म परमात्मा की यात्रा करे। तुम अपने हाथ में कागज लो, उस पर थोड़ा बालू रख दो, रेती के दाने, और नीचे राम नाम का ध्वनि करो, रेती के दाने उसी सुंदर स्वरूप आकृति में आपको सूक्ष्म रूप से चेंज मिलेंगे। तुम श्री कृष्ण का पवित्र नाम उच्चारण करो, बालू के कण, रेती के दाने उसी पवित्र आकृति में बदले हुए मिलेंगे। तुम अल्लाह अल्लाह करो तभी भी पवित्र आकृति बनेगी, और तुम गाली बको तो विभिन्न आकृति बनेगी। तो शब्द के पीछे उसका अर्थ और उसका रस छुपा है, रस विरस, खट्टा है या कड़वा, सब छुपा है। आम कहते ही वो आम का माधुर्य, आम की आकृति, आम का रस, आम के गुण आपके चित्त को, आपके मुंह को आकर्षित कर देते हैं, और केरी का आचार बोलते ही आपके मुंह में उस प्रकार का कुछ एहसास होने लगता है। और गंदी वस्तु का नाम लो मलमूत्र आदि का तो चित्त में और आंखों के आगे वही गंदा भाव आ जाता है। जब शब्द तुम्हारे चित्त पर असर करते उससे भी ज्यादा तुम्हारे रक्त के कण पर, तुम्हारे मन पर असर करते, तुम्हारे चेहरे पर असर करते उससे पहले तुम्हारे मन पर असर करते। तो भगवान के पवित्र नाम का चिंतन, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण और भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करने से तुम लोगों के सबके मन एक साथ पवित्र होते हैं, तुमुल ध्वनि प्रकट होता है और तुमुल ध्वनि के रेंज में कोई पहाड़, पापों का पहाड़ लिया हुआ महापातकी, महाअपराधी, महापापी व्यक्ति भी अगर उस तुमुल ध्वनि कीर्तन के वातावरण में आ जाता है तो वो भी डोलने लगता है और उसको भी उतना ही पवित्र लाभ मिलता है और हृदय पवित्र होने लगता है। लाख आदमी के बीच एक आदमी केवल सत्व गुण संपन्न है, केवल एक व्यक्ति सत्व गुण संपन्न है तो कीर्तन के वातावरण से लाख के लाख आदमी को सात्विकता के संक्रामक आंदोलन मिलेंगे। इसलिए नानक जी ने कहा, भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम। भय का नाश होता है, दुर्मति दूर होती है। जो भी दुख है, दुख का मूल है दुर्मति। दुर्मति होगी तो मन खींच जाएगा उसको, और सुमति होगी तो मन को खींच के चलेगी। भय मनाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम। निष्दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम। तुलसीदास कहते भगवान नाम का खजाना ऐसा सहज में मिलता है, फिर भी आश्चर्य के लोग तिजोरी वालों के पीछे चक्कर काटते हैं। ये बुद्धि के ज्ञान का अनादर है, वास्तविक ज्ञान का अनादर है। घर से जाओ खा के तो बाहर मिले पका के, और घर से जाओ भूखे तो बाहर मिले ढक के। ऐसे अपने आत्मा में अगर तृप्त है, संतुष्ट है तो बाहर भी तुम सफल हो जाते हो, और अपने आप में तुम तृप्त नहीं, संतुष्ट नहीं है तो बाहर दीनहीन होते हो, तो धुतकारे जाते हो। कोई दिल्ली के चक्कर खाता है तो कोई बम्बई के चक्कर खाता है तो कोई गांधीनगर के चक्कर खाता है। 84 के चक्कर से छुड़ाने वाले वास्तविक ज्ञान के लिए जो चक्कर काटता है उसके सारे चक्कर कट जाते हैं। जो इंद्रियगत ज्ञान के चक्कर में है उसके लिए तो दुख सुख बड़ी आंधी तूफान है, वो तो तिनके किनाई दुख सुख में भटकता रहता है, बमंडल में गिरता रहता है। जैसे तिनखा उठता है बमंडल में, ऐसे ही इंद्रियगत ज्ञान वाला व्यक्ति दुख में दुखी हो जाता है और निंदा में निंदा का शिकार बन जाता है, वाहवा में वाहवाही का शिकार बन जाता है। अपना उसका स्टैंड नहीं रहता क्योंकि इंद्रियगत ज्ञान में जीता है। जो बुद्धिगत ज्ञान में जीता है वो कभी इधर कभी उधर, और जो बुद्धिगत ज्ञान से गुरु कृपा से छलांग मार के वास्तविक ज्ञान में आ जाता है वो सदा हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं। जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। वह मुक्त आत्मा है, जीते जी वह मुक्त है, मरने के बाद मुक्ति नहीं। उसको उत्तरायण मार्ग अथवा दक्षिणायन मार्ग का भय नहीं रहता, वो तो जीते जी मुक्त होता है। ऐसी बुद्धि जो भगवान से गुरु से संतों से दूर ले जाए वह बुद्धि नहीं दुर्बुद्धि है। चतुराई चूल्हे पड़ी, ऐसी चतुराई तुम्हारी चूल्हे में पड़ी, अशांति की आग में ले जाएगी वो बुद्धि। फिर हे वाइन तू मुझे सुख दे, हे डिस्को तू मुझे सुख दे, हे लेडी के हार्ड मास मल मज्जा का शरीर तू मुझे सुख दे, हे वाइन का अल्कोहल तू मुझे सुख दे, हे तंबाकू का निकोटिन तू मुझे सुख दे। वो कमबख्त क्या सुख देंगे निकोटिन, उसको चतुर्बुद्धि बोलते। सुधरे हुए लोग प्रगतिशील, प्रगतिशील वास्तव में तो वो है कि सुख सपना दुख बुलबुला, सुख दुख के सिर पर पैर रखकर अपने आत्मा में पहुंचता, उसने प्रगति की। मंकी ब्राह्मण की नहीं, जो आया वो खा लिया, जो आया वो मुंह में डाल दिया, जो ऐसा आया नाच लिया, सुख के लिए भटक भटक के जीवन पूरा कर दिया, फिर भी अशांति, ये क्या प्रगति? आग लगे ऐसी प्रगति पे? हर डेढ़ मिनट में, 90 सेकंड में एक आदमी कैंसर की बीमारी से मर रहा है यूरोप में, ऐसा मैंने सुना है। हर 28 मिनट में एक आदमी पागल हो जाता है सुधरे हुए देशों में, हर 18 मिनट में एक आदमी सुसाइड कर देता है। जयराम जी की। मैंने तो अपनी आंखों से देखा, अमेरिका में हमारी कार जा रही थी, वो तो तीन तीन चार चार कार एक ही साथ चलती, तो पास में एक बढ़िया कार में लेडी थी, मुंह में सिगरेट था, ड्राइविंग करती जा रही थी, कभी तो अपने सिर को कूटती है, कभी हाथ के इशारे, उसके चेहरे के एक्शन देखकर हमने ड्राइवर को बोला इसके पैरेलल में चलाओ। तो देखा, मैंने देखा ये सब अकेली है, किसके साथ बड़बड़ा रही? बोले बापू ये एक नहीं, इधर तो कई लेडी ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं अशांति के कारण। नारायण हरि, नारायण हरि। परमात्मा में स्थिति करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। पवित्र स्थान और स्वस्थ शरीर, भगवत प्रार्थना और जप से मन को संयत करें। जप से मन संयत होता है, मन का रजो तमोगुण क्षीण होता है। जप से शांति, जप से आनंद, जप से भक्ति, जप से संयम, जप से सत्वगुण और देर सवेर जप के अर्थ में विलय होने वाले को सिद्धियां भी मिलती और सिद्धिदाता परमात्मा का भी अनुभव होता है। जो ब्रह्मवेता है वे किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से राग नहीं करते, क्योंकि वो संसार के सुख भोग की कामना से पार आत्म सुख में आराम पाते हैं। पूजक और मारक के प्रति भी अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रखते, वे उत्तम कोटि के साधक हैं। वस्तु व्यक्ति आदि की आशा वे वर्तमान में ही त्याग देते हैं, वो तो आत्म परमात्मा को पाने की आशा से ही भरे हुए दिल है। उन्हीं लोगों के सब दुख सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं जो बाहर के भोग की आशा छोड़कर आत्म सुख में लगे हैं। जीवन में ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य, सम्मानित जीवन, स्वस्थ शरीर, सम्मानित जीवन और सुख शांति संपन्न जीवन। संयम से, स्वास्थ्य के नियमों से शरीर स्वास्थ्य कर ले और दूसरे को मान देने की आदत से और दूसरों की भलाई करने और दुख कातरता की आदत से जीवन सम्मानित होना लगेगा। ईमानदारी से दूसरों के दुख की निवृत्ति में जितना लगेंगे उतना ही अपना अंतःकरण सुखी होने लगेगा और सम्मानित जीवन के द्वार खुलेंगे। जो सेवा करता है वो दूसरे की सेवा तो क्या करता है, उसके अंतःकरण की सेवा हो जाती है। गरीब गुरबा तो तुम्हारी बाहर की चीज का फायदा लेता है, लेकिन तुम तो सेवा करके अंदर के सुख के फायदे के अधिकारी हो जाते हो। विवेकानंद बोलते थे कि जिन गरीब गुरबों की सेवा करते हो आंसू पहुंचते हो तो तुम बड़े अपने को दाता मत मानो और उनको दीनहीन मत मानो, उनकी कृपा समझो, ईश्वर की कृपा समझो कि ईश्वर इसी रूप में आकर तुम्हारी सेवा स्वीकार करता है। ऐसी सेवा तुमको शांति सुख देगी और अहंकार से बचाएगी। दक्षिणा भिगो के दी जाती है अथवा तिल या अक्षत मिला के दिए जाते हैं। सूर्य को भी अक्षत मिला के अर्घ देने की भी परंपरा है, अर्थात तुम्हारा किया हुआ कर्म केवल क्षय होने वाले अहंकार को अथवा वाहवाई को न दे, तुम्हारा किया हुआ सत्कर्म अक्षय फल दे, अक्षत मिलाओ। दक्षिणा भिगा के देते हैं, केवल रुपए पैसे नहीं, इसमें अपना भाव भी मिला के देते हैं। भाव से किया हुआ सत्कर्म अनंत गुना पुण्यदायी हो जाता है। कायदे सर अगर टैक्स भरना पड़ता है अथवा सजा मिल जाती है 2000 दंड भरने का दंड पड़ जाता है, उससे कोई पुण्य नहीं होता है। लेकिन भाव से अगर 2000 खर्च जाते तो हृदय में शांति उसी समय आती, हृदय को संतोष का सुख अभी मिलने लगता है। भावो ही विद्यते देवो, चाहे तिल के दो लड्डू दो किसी गरीब गुरबे को अथवा मित्र कुटुंबी को, चाहे दो मन दो, लेकिन उसमें अपना भाव तो 10 मन मिला के रखो। भावो ही विद्यते देवो, भगवत भाव मिला कर दो। खाने वाला भगवान, देने वाला भगवान, मेरे अहम का क्या है काम, ये उत्तम दान और उत्तम दृष्टि है। अतिथि सत्कार और शरणागत सेवा धन के तीन ही अधिकारी होते हैं। मरने के बाद पत्नी, पुत्र और शरणागत व्यक्ति धन का अधिकारी होता है, सेवक। या तो जिसने सेवा किया है वही धन का अधिकारी, बच्चा धन का अधिकारी, पत्नी धन का अधिकारी। धन के तो अधिकारी पत्नी, पुत्र और सेवक होते हैं, लेकिन भक्ति के अधिकारी तो सब ही हो जाते हैं। भगवान को पाने के अधिकारी तो सब ही हो सकते हैं। बाहर का धन तो तुम्हारे तीन व्यक्ति अधिकारी हो गए, लेकिन भगवत धन और भक्ति का धन तो सब अधिकारी है। और तुम्हारा वह धन जितना बांटते उतना ही बढ़ता है, खुटता नहीं। एक आध बात और समझ ले कि अपने जीवन में कोई न कोई नियम ले लो, कोई न कोई सहारा नियम ले लो। बताया था वो साइकिल की बात, साइकिल भागती हुई आ रही, सिपाही ने विसल मारा, ए साइकिल रोको रोको, नाम लिखूंगा। वो बोलता है, ए खाकी कपड़े वाले हट जाओ ऊपर गिरूंगा। बोले क्यों गिरेगा? बोले साइकिल में बत्ती नहीं, ऐसी बात नहीं, ब्रेक भी नहीं है, तुम हट जाओ। तो क्या तुम्हारे जीवन की साइकिल में संयम की ब्रेक है कि नहीं? अगर नहीं है तो आज से ही लगवा लो ब्रेक। कम से कम इतना घंटा मौन रहूंगा, कम से कम इतनी माला रोज जपूंगा, कम से कम आय का इतना हिस्सा सत्कर्म में लगाऊंगा, कम से कम इतने पन्ने सत्शास्त्र का पढ़ूंगा, कम से कम महीने में इतने दिन एकांत में रहूंगा, अथवा महीने में या 6 महीने में इतने दिन एकांत में रहूंगा, इतने घंटे एकांत में रहूंगा हफ्ता में। ऐसा कोई नियम बना लो और उस नियम को लगे रहो। व्रतेन दीक्षाम वापनोति, तुम कुछ व्रत लेते हो तो दक्षता आती है। दक्षता से तुमको अपने आप में श्रद्धा होगी, शास्त्र पर श्रद्धा होगी, भगवान पर श्रद्धा होगी, और वो श्रद्धा ही तुमको सत्य स्वरूप ईश्वर को मिला देगी। इसलिए जीवन में कोई न कोई व्रत लेना चाहिए, कोई न कोई नियम लेना चाहिए। 10 मिनट बैठ के ये आसन करूंगा, पद्मासन पे 10 मिनट बैठकर दीर्घ प्रणव का जाप करें, हरि के नाम को मिलाकर, बहुत फायदा होता है। स्वास्थ्य में भी होता है, मानसिक भी होता है, बौद्धिक भी होता है, वायुमंडल को भी फायदा होता है, अपने को भी होता है, कुल में कुटुंब में भी होता है। जिसके हाथ जूठे बार बार सिर पर जाते उसकी बुद्धि मंद हो जाती, दांत मैले, कपड़े मैले, हाथ जूठे मैले, उसके पास कितना भी संपत्ति हो लेकिन वो जाने के लिए ही समझो तत्पर रहेगी। चक्रपाणी साक्षात नारायण हो उसको भी लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी। प्रदोष काल में भोजन, प्रदोष काल में मैथुन, और हाथ दांत मुंह जूठा अगंदा रखे, कपड़े मैले, चाहे गरीबी के कपड़े हो, साफ सुथरे हो पहने हुए। ये झोपड़पट्टी के लोग बेचारे आधा तो नादानी के कारण ही दुखी हो रहे हैं। मेहनत तो खूब करते, मजदूरी तो खूब करते, लेकिन ये धर्म के रहस्य, सुखी होने के रहस्य का ज्ञान नहीं, इसलिए बेचारे ज्यादा दुखी हैं। कितना सरकार खर्चा करे, कितना अपनी समितियां खर्चा करती है, कितना ट्रस्ट खर्चा करती, लेकिन वे तो वहीं के वहीं पाए जाते। उनको भी खुद उठना चाहिए, समझ का सहारा लेना चाहिए। इसीलिए अपन लोग उनको सत्संग सुनाकर बाद में अनाज देते। राशन कार्ड है कई गांवों में, आश्रम के तरफ से फ्री राशन बंटता है, लेकिन राशन के साथ साथ सेवाधारी उनको सत्संग सुनाते, कीर्तन कराते, और वे लोग नहाने धोने लग गए। मच्छी पीर के कई लोग अब नहाने लग गए, काकरिया के पास में, नागिनावाड़ी के पास में मच्छी पीर के लोगों को राशन कार्ड मिले, लेकिन वो राशन तो देते उनको सब्जी या राशन वाशन कपड़ा देते, लेकिन उसके साथ साथ वे भिखमंगे न हो जाए, पराश्रित न हो जाए, अपने पैर पे खड़े रहे, इसलिए उनको साहस संयम पुरुषार्थ और पवित्रता के गुण भी देना हम लोगों का कर्तव्य है, उनको ऊपर उठाना हमारा कर्तव्य है। आपके पास जो भी है योग्यता उसको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय खर्च करिए, यही उन्नति का मार्ग है, यही योग्यता का सदुपयोग है और योग्यता को बढ़ाने की ये मास्टर की है। आपकी जितनी भी जो भी योग्यता है उसको ईश्वर की प्रसन्नता के लिए समाज रूपी ईश्वर की सेवा में लगा दे, फिर देख मजा, आप भी सुखी, आपके संपर्क में आने वाले भी सुखी। जो योग्यता है वो अपने शरीर को मजा दिलाने के लिए लगाया तो आप भी टेंशन में, आप भी दुखी और भी दुखी। आपके पास जो बाहर की चीज मिली हुई चीज है वो समाज के हित के लिए लगाते रहे, शरीर भी मिला हुआ है समाज के हित के लिए, समाज रूपी ईश्वर की सेवा के लिए, तो आपके हृदय का ईश्वर तत्व प्रकट होगा। नहीं तो बाहर की चीजें आप थाम थोपते जाएंगे, थामते जाएंगे, थमेंगी तो नहीं, केवल उनका चिंतन थमेगा, अंत में छोड़ के ही मरना पड़ेगा। इसलिए उनका चिंतन न थमे, चिंतन परमात्मा का और उनका उपयोग, वस्तुओं का उपयोग और चिंतन भगवान का, वो आपको भगवान से मिला देगा। ऐसा कौन है जो दुख के समय दुखी नहीं होता? ऐसा कौन है कि अशांति के समय जहां अशांति नहीं है? ऐसा कौन है जो मृत्यु के समय उसको मृत्यु नहीं छूता है? ऐसा कौन है जो तुम्हारा परम मित्र है? ऐसा कौन है कि मौत के बाद भी जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता है? ऐसा कौन है कि परम सुंदर है, सारे सौंदर्य उससे ही उत्पन्न होते हैं? ऐसा कौन है जो परम वीर है, सारे वीरों को वही देता है, सब वीर उसकी कृपा के भिखारी? ऐसा कौन है जो परम विद्वान है, सारे विद्वानों की विद्या उसी की रहमत से आती है? ऐसा कौन है कि सब सुंदरों का सुंदर है, सारा सौंदर्य उसी से निखरता है? ऐसा कौन है कि ब्रह्मा को सृष्टि करने का, विष्णु को पालन करने का, रुद्र को संहार करने का सामर्थ्य देते हुए भी उसके सामर्थ्य में रत्ती भर की कमी नहीं होती? ऐसा कौन है कि जागृत में तुम्हारे साथ रहता है, सपने में भी तुम्हारे साथ रहता है, सुषुप्ति में भी तुम्हारे साथ रहता है और तुरिया में भी तुम्हारे साथ रहता है? उसको खोजो और वो है वास्तविक ज्ञान आत्मा। वही आत्मा व्याप रहा है इसलिए परमात्मा। घड़े का आकाश महाकाश एक ही है, ऐसा जिनको श्रवण करने को मिल गया, थोड़ा मनन करने को मिल गया, ऐसे लोग जब प्राण त्यागते तो उत्तरायण के रास्ते से दिन का अधिष्ठाता देवता उनको शुक्ल पक्ष के अधिष्ठाता तक पहुंचा देता है, अग्नि का अधिष्ठाता देव दिन, दिन का अधिष्ठाता देव शुक्ल पक्ष तक पहुंचा देता है, शुक्ल पक्ष का अधिष्ठाता देव, जैसे ट्रस्ट का अधिष्ठाता होता है, नगर पालिका का अधिष्ठाता होता है, जेल का अधिष्ठाता होता है, ऐसे ऊपर के लोगों के भी अधिष्ठाता होते और वो ब्रह्म लोक पहुंचा देता है ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी जब तक है कल्प पर्यंत ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक रहता है। इस समय 50 वर्ष पूरे हो गए, 51वें वर्ष का ब्रह्मा जी का, 51वें वर्ष का प्रथम दिन शुरू हुआ और वो भी आधा पूरा हो, फिर भी 50 वर्ष ब्रह्मा जी के तो अपने धरती के तो करोड़ों अब्जो वर्ष हो जाएंगे, वहां तक वो ब्रह्म सुख भोगता है ब्रह्मलोक का। बाद में ब्रह्मा जी का थोड़ा सा तत्व ज्ञान का उपदेश पाकर जिसमें ब्रह्मा जी लीन होंगे उसी में वो लीन हो जाएगा, कहां तो सृष्टि करता और कहां ये साधारण चाय आटा दाल धनिया जुटाने वाला जीव सत्संग के बलिहारी की उसकी बराबरी करा देता है। गुरु की बाणी, बाणी गुरु बाणी विच अमृत सारा। इसलिए वशिष्ठ जी कहते कि हे राम जी, ज्ञानवान की भली प्रकार सेवा करो, ईमानदारी से, वफादारी से, गद्दारी से नहीं, दिखावटी से नहीं, ज्ञानवान की भली प्रकार सेवा करो, उसका बड़ा उपकार है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि मनुष्य को मणि माला आदि धारण करना चाहिए, किसी का शुक्र प्रबल होता है, किसी का शनि, किसी का कोई प्रॉब्लम, तो जो मणि मणि पहनते हैं तो उसके शरीर पर मन पर वो ग्रहों का विपरीत असर जो होता है वो हट जाता है। इसके जानकार लोग हों और अपने को विश्वास हो तो फायदा होता है। लेकिन मैं तो ये भी मानता हूँ कि कितनी कितनी मणियाँ पहनेंगे, कितनी कितनी मालाएं पहनेंगे, मणि और मालाओं का जो अधिष्ठान है उस परमात्मा का चिंतन जप और ध्यान बढ़ा दे तो उससे भी बहुत सारा लाभ हो जाता है। कोई पहरता है तो उसमें मेरा विरोध नहीं है, मैं सहमत हूँ, और पहर नहीं सकता है तभी भी मैं सहमत हूँ। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, बोलो ना, नारायण हरि हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण।
तुम इधर उधर की चिंता फिकर न करो, तुम परमात्मा का जिक्र करो, वास्तविक ज्ञान का जिक्र करो, वास्तविक ज्ञान का श्रवण करो, वास्तविक ज्ञान का आदर करो, वास्तविक ज्ञान का मनन करो, तो फिर उसके प्रभाव से तुम्हारा ऐहिक सब कार्य सफल हो जाएगा। बड़े में बड़ी सफलता कौन सी कि आप जो चाहें वो हो जाए, ये बड़े में बड़ी सफलता है ना। बड़े में बड़ी सफलता ये है कि आपकी चाह मिटती जाए, आपकी इच्छाएं वासनाएं मिटती जाए, और आप जो चाहें वो हो तभी भी आपको ज्यादा हर्ष न हो, और आप जो चाहें वो न हो तो आपको शोक न हो। ये सफलताओं के बाप का भी बाप है। आप जो चाहें वो अगर होता रह गया तो आप फंस जाएंगे, और चाह पूरी करने से चाह मिटती नहीं, चाह पूरी करने से तो चाह गहरी उतरती है, खुरेदती रहती है, और चाह पूरी हो गई और उस सफलता में अगर आसक्ति हुई तो उन वस्तुओं के चिंतन में, उन वस्तुओं के संभालने में, उन वस्तुओं के संग्रह में समय पूरा हो जाएगा, और अंत में तो वस्तु छूट जाएगी। सफलता की उपलब्धियां सारी एक मन की कल्पना है। मेरे को गाड़ी मिल गई, मेरे को मोटर मिल गई, मेरे को लाड़ी मिल गई, मेरे को चार छोकरे हैं, फलाना है। लेकिन तुम आए थे तब अकेले, जाओगे तब अकेले, बीच में कल्पना भर गई खोपड़ी में कि इतना इतना है, नीरा धोखा है और क्या है। इसी का नाम माया है, धोखे का दूसरा नाम माया है। बधु सारू छे, अपनी कृपा छे, घरनू घर छे, वाड़ी छे, गाड़ी छे, लाड़ी छे, मौज छे, लीला लहर छे, लीला लहर। पर मृत्यु नो झटको के इनकम टैक्स नो नोटिस क्यारे सुकावी ना के कहीं केवाय नहीं। लीला लहर तो उसको है जिसने लहर की परवाह न की, दुख को सपना, सुख को सपना, वास्तविक ज्ञान को, परमात्मा को अपना माना, उसके लिए लीला लहर है। जैसी कृष्ण, जो थोड़ी सी चीजों को पाकर अपने को बड़ा मानते उसने तो अपना बड़प्पन दबा दिया, थोड़ी सी चीजें चली गई अपने को छोटा मानते उसने अपना बड़प्पन दबा दिया। चीजें जाने से तुम छोटे नहीं होते हो, चीजें आने से तुम बड़े नहीं होते हो, लेकिन ज्ञान बढ़ने से तुम बड़े होते हो और ज्ञान दबने से तुम छोटे हो जाते हो। शबरी भिलन को हम छोटा नहीं कह सकते और रावण को वास्तविक में हम बड़ा नहीं कह सकते। हाँ, बाहर से तो रावण बड़ा था लेकिन वास्तविक में बड़ा न था, क्योंकि उसको अंदर की शांति नहीं, सुख नहीं। जिसको हृदय का सुख नहीं, शांति नहीं, वो कितना भी बड़ा दिखे लेकिन वो बेवकूफी का ढेर ही बढ़ गया, सुख तो नहीं बढ़ा। और शबरी भीलन हो, रहीदास चमार हो या और कोई गरीब गुरबा हो, लेकिन जिसके हृदय में भक्ति प्रेम आनंद है वो तो महाराज बड़े में बड़ा जो परमात्मा है उसके वास्तविक ज्ञान के तरफ जा रहा है। इसलिए उसका बड़प्पन तो अच्छा है क्योंकि बड़े में बड़ा जो प्रभु है उसके साथ उसका तालमेल हो रहा है। तो यहाँ 6 मासा उत्तरायण और 6 मासा दक्षिणायण के ये मास वर्ष बदलते हैं, उसमें बीच में जो थोड़े दिनों की गैप भी पड़ती है, बीच में 3 साल में अधिक मास आता है, और कभी कभी कुछ वर्षों में 6 मास आता है।
क्षय मास में शुभ कर्म जनेऊ शादी विवाह आदि नहीं किए जाते। अधिक मास में जप तप आदि किए जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम तो क्षय मास में भी लिया जाता है और अधिक मास में भी लिया जाता है और दूसरे मासों में भी लिया जाता है, क्योंकि भगवान सदा है तो भगवान की स्मृति और भगवान का चिंतन भी सदा किया जा सकता है। खोजते खोजते खुद खो गया हूँ, जैसे खोजता था वही हो गया हूँ। उसको खोजते जाओ वास्तविक ज्ञान को, तो फिर पता चलेगा मैं वही था। ये बुद्धिगत ज्ञान बुद्धि वृत्ति का था, इंद्रियगत ज्ञान आकर्षण मात्र था, वास्तविक में मैं वही था। कठोवली उपनिषद में आता है, यम यम इच्छति मनसा, जिस जिस लोक की मन से इच्छा करता है उस लोक में अपने शिष्य को अपने भक्त को वो ज्ञानी भेज सकता है। जैसे राष्ट्रपति अथवा प्राइम मिनिस्टर जिस जिस राज्य में चाहे उस राज्य में अपने पहचान वाले आईएएस ऑफिसर को कलेक्टर बना सकता है, लेकिन वो चपरासी को कलेक्टर नहीं बना सकता। ये भी इतना सत्य है, अगर चपरासी को कलेक्टर करना चाहता है कोई राष्ट्रपति तो सीधा कलेक्टर की पोस्ट पे नहीं भेज सकता, हाँ परीक्षाओं से पसार करवाएगा। ऐसे ही गुरु अगर ब्रह्मलोक तक पहुंचाता है तो कीर्तन से ध्यान से सेवा से भजन से हम लोगों को पसार करके फिर ब्रह्मलोक तक भेज सकता है, वैकुंठ तक भेज सकता है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। ध्यान भजन कीर्तन के समय जो दिल बनता है, मन बनता है, हृदय की पवित्रता बनती है, तो तुरंत घड़ियाल देखकर भागो मत। थोड़ी देर फिर उसी भाव में बैठे रहो, कुछ भी ना करो, उसी भाव को गहरा उतरने दो। हम कमाई तो करते लेकिन बिखेर देते बिल्कुल। किसी का हाथ छूटा होता है ना फिर चिल्लाते बरकत नहीं पड़ती, हाथ छूटा रखेगा तो बरकत कहाँ से आएगी। ऐसे मन को छूटा रखेगा तो हम साधन भजन की बरकत कहाँ आएगी। कि हम कोई लेक्चर नहीं कर रहे, कोई प्रवचन या सत्संग नहीं कर रहे, ये तो घर घरेलू जैसे अपने मित्रों के बीच एक मित्र बात करता है ऐसे हम आपको समझा रहे, इंटरनल वातावरण हो रहा है ये तो अंदर अंदर, और इससे बहुत लाभ होता है। हमको जैसे हमारे गुरु प्यार से समझाते थे, सत्संग भाषण प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम तो बाहर होते हैं, आश्रम में तो ऐसे ही होता है जैसे हो रहा है। हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिकरे खुदा। हम जब खुदा खुदा उत्साह से आनंद से बोलते हैं तो फिर अपने वाले भाईजानों को भी राम और कृष्ण उत्साह और आनंद से बोलना चाहिए, नेरो माइंड को छोड़कर एक ही परमेश्वर के गीत गाने चाहिए। हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिकरे खुदा। खुदा ताला प्रसादेन, सर्वकार्यम फते भवे, सर्वकार्यम फते भवे। हरि हरि हो। जो आनंद का चिंतन करता है, सफलता का चिंतन करता है, खुशियों का चिंतन करता है, प्रभु का चिंतन करता है, वो सुखी हो जाता है। और जो दुखों का चिंतन करता है, भोगों का चिंतन करता है, परेशानियां आई थी या आएगी उसका चिंतन करता है, वो चिंतन के बल से उसी वातावरण को क्रिएट कर लेता है। इसलिए हजार हजार मुसीबतें आ जाए, हजार हजार प्रॉब्लम आ जाए, फिर भी तुम चिंतन तो सफलता का करो। हे च फिकर मत कर्तव्यम, फिकर को छोड़ो, ईश्वर का जिक्र करो कि ऐसा क्या है जो मरने पर नहीं मरता, और वो तो मेरा साथ है और वो मेरा अपना आपा है। शरीर की मौत से मेरी मौत नहीं होती, शरीर की बीमारी से मेरी बीमारी नहीं होती, शरीर के दुख से मुझ आत्मा में दुख नहीं है, महाप्रलय आए, चाहे आकाश फट पड़े, चाहे सुमेरु पर्वत के नीचे शरीर को दबा दिया जाए, फिर भी मेरा बाल बांका नहीं होता, वह मैं वास्तविक चैतन्य ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा चिंतन करो। अनल हक जो होगा देखा जाएगा, फिकर फेंक कुएं में, रोटी तो उसको देनी है और लेके तो हमारा बाप भी नहीं गया, फिर चिंता किस बात की। अरे बोले बड़ी निंदा हो गई, निंदा करने वाला भी मर जाएगा, निंदा जिस शरीर की होती वो भी मर जाएगा, मरने वालों के पीछे क्यों मरना, फिकर फेंक क्यों कुएं में। अरे मेरी तो बड़ी प्रशंसा हो रही, तो प्रशंसा करने वाले भी शरीर हैं और प्रशंसा जिसकी होती वो भी शरीर है, ये दोनों शरीर क्षय होने वाले, क्षीण होने वाले, उसका अहंकार क्या करना। लोग बोलते अब क्या करें, पैसे नहीं है, ये हो गया वो हो गया, पैसे होते तो दान करते, पैसे होते तो ये करते, पैसे होते तो ये करते। अरे माल पे जकात होती है और इनकम पर टैक्स होता है, नहीं है तो फिकर क्यों करता है, नहीं है तो उतना करने की मेहनत कम, तुम्हारे पास जितना है उतना ही तुम करो, हाय हाय करके क्यों परेशान होते हो। क्या करें, बच्चों को देना है, क्या करें उनको देना है, क्या करें, कपड़े सिलवाने, कपड़ा ये करना है, करना है, जितना हो सकता है उतना करो, जितना नहीं हो सकता तो वो तो भगवान भी जानते, लोग जाने चाहे ना जाने, ईमानदारी से अपने पास जो भी है ठीक ठाक करो, बाकी का टेंशन लेके मत घूमो कि हम इसके जैसे होंगे तब करेंगे। एक आदमी गया महात्मा के पास, महाराज आशीर्वाद दे दो हम स्वस्थ हो जाए, आश्रम में खूब सेवा करेंगे, अभी लखपति है और स्वस्थता नहीं है, बोले हम स्वस्थ हो जाएं तो आश्रम में आएंगे सेवा करेंगे। दूसरा आया बोले महाराज हम कंगाल हैं, हम उसके जैसे लखपति हो जाएंगे तो खूब दान करेंगे। ओ कंगाल है स्वस्थ है तो तू शरीर से सेवा कर, और वो शरीर से बीमार है तो धन से सेवा कर, लेकिन बेईमान दोनों जो है उसको तो लगाते नहीं, जो नहीं है उसको मांगते रहते, ये तो बेईमानी है, ऐसे आदमी की प्रगति होना मुश्किल है। महाराज ये बेटे को आशीर्वाद करो, ये डॉक्टर हो जाए, फिर आपके आश्रम की बहुत सेवा करेगा। तो तूने आज तक कौन सा जख मारा? ना बेटा डॉक्टर हो जाए तब सेवा करे, तो तू तो डॉक्टर का बाप है, तू क्या कर रहा है। ये तो अपने को बचाने की बात है, कहने का तात्पर्य ये नहीं कि यहीं आके सेवा करो, जहां भी मिल जाए अपने तन को, अपने मन को, अपने जीवन को जीवनदाता के पाने के लिए लगा रखो बाजी पर, चिंता ना करो। नारायण नारायण नारायण। कुछ ऐसा भी समय रखो कि न बोलो, कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करने की जो मौनी अवस्था है, ऐशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम मोहंती, तो ब्राह्मी स्थिति है। तन से मन से कोई संकल्प, तन से कोई क्रिया नहीं, मन से कोई संकल्प नहीं, नींद भी नहीं, आलस्य भी नहीं, सपना भी नहीं, ऐसी जो बीच की अवस्था है वो तो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है, ब्रह्म परमात्मा की। और ये ऐसी क्षणों में कभी कभी आ जाती किसी किसी को, उसी के कारण दूसरों को भी आनंद आता है, चुप्पी बैठे रहो। ऐसी कृपा बरसाने वाले गुरुओं को जब शिष्य पहचान लेते तो शिष्य बोलते गुरु जी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। काम में क्रोध में अकेले अपने ढंग से जाएंगे तो खाने में, काम में, क्रोध में, बीड़ी में, चाय में, उधर में भागेगा, लेकिन उन महापुरुषों के निकट हम बैठते ना तो काम में, क्रोध में, लोभ में नहीं, हृदय शांत होता है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाता है। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, कुछ भी नहीं बोलते। गुरु मौन व्याख्यानम शिष्य से छिन्न संशया। ऐसा भी आता है उपनिषदों में, सरोवर के नीचे गुरु बैठे हैं, गुरु बालक हैं, युवा युवा उम्र और शिष्य वृद्ध हैं, गुरु चुपचाप हैं और शिष्यों को सब समझ में आ रहा है, गुरु का मौन व्याख्यान है और शिष्यों के संशय साफ हो रहे। पाल बेंटन का भी ऐसे ही हुआ, रमण महर्षि चुप बैठे और पाल बेंटन के सौ प्रश्न की लिस्ट कहीं शांत हो गए। मित्र ने पूछा आस्क योर क्वेश्चन स्टॉप, क्यों डिस्टर्ब करते हो, मिल गया उत्तर दीदार मात्र से। जो तेरे मंजिल के राही हैं वे समझाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर लौटाए नहीं जाते। हाँ, कितना कोई आंधी तूफान अफवाह निंदा करे लेकिन उनको कोई रोक नहीं सकता। जो तेरे मंजिल के आशिक हैं वे समझाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर लौटाए नहीं जाते। भगवान की जहां विशेष विशेष विभूतियां प्रकट हुई, भगवान ने उनका वर्णन करवाया। ऋषियों में मैं भृगु हूँ, गऊओं में मैं कपुला हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, नक्षत्राणाम शशि अहम, तारों में नक्षत्रों में मैं शशि हूँ। अब सब में ना देखो तो विशेष विशेष में देखो, तो मन अगर बदलता जाता है तो भगवान में देख, भगवान पर नहीं ठहरा मूर्ति पर, तो चलो चांद पे ठहराओ, चांद में मेरे परमात्मा है। फिर वहां से मन भागेगा गंगा, गंगा जी भी परमात्मा है। चलो फिर साधु संत ऋषि माता पिता, तो जहाँ जहाँ विशेष विशेष दिखे वहाँ वहाँ भगवान के वैभव को देखे, भगवान की स्मृति करे, तो तुम्हारा चित्त भगवताकार हो जाएगा, जीव भाव के दोष निवृत्त हो जाएंगे और इस भाव का रस और इस भाव का सुख और इस भाव का आनंद और इस भाव का माधुर्य प्रकट होते हुए तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। सूर्य नारायण को ना सूर्य भगवान कहते हैं, सूर्य नारायण कहते हैं। जब सूर्य दिखे तो उसमें मेरे नारायण का तेज है, और चंदा दिखे तो उसी में मेरा नक्षत्राणाम शशि हम मेरा परमेश्वर है। ऋषि मुनि संत दिखते हैं तो वो संतों में संतत्व मेरे प्रभु का है। पक्षियों की किलहोल में उनका किलहोल का अधिष्ठान मेरा प्रभु है। तो दिखे तो अनेक, लेकिन अनेक में गहराई में, अनेक की गहराई में छुपा हुआ एक, उसकी जब स्मृति करोगे तो तुम्हारे चित्त में सुंदर भाव आएगा, विकार क्षीण होने लगेंगे और निष्कामता का सद्गुण विकसित होगा। अगर तुम एक साथ विश्व भर की सेवा करना चाहते हो, एक साथ बहुत आदमियों का भला करना चाहते हो, अथवा एक साथ अपने चित्त को पवित्र करना चाहते हो, जगत से जगत की व्यापक सेवा करना चाहते हो, तो आप ये संकल्प करो कि हम निर्मम हो जाएं, हम निष्काम हो जाएं। ममता और कामना हमारे भगवतीय स्वभाव को, हमारे आत्म स्वभाव को ढक कर रखती। निष्काम और निर्मम होकर तुम जगत की सेवा करोगे। ममता या कामना युक्त जो चित्त है वह भूला हुआ चित्त है। ममता और कामना से हकीकत में हमारी योग्यताएं कुंठित होती है और काम बिगड़ता है। जितना जितना व्यक्ति निर्मम और निष्काम होता है उतना उतना उसका ईश्वरीय स्वभाव, आत्म स्वभाव प्रकट होता है। वही लोग ईसा मूसा मोहम्मद कृष्ण क्राइस्ट बुद्ध और महावीर हुए जिन्होंने निष्कामता और निर्ममता का पाठ अपने जीवन में सार्थक किया। तुम जितने जितने अंश में निष्काम होते जाओगे उतने उतनी दैविक शक्तियां तुम्हारे द्वारा निकट काम करती जाएगी। जितने जितने तुम निर्मम होते जाओगे उतना उतना तुम्हारा बौद्धिक समत्व बढ़ता जाएगा। कामना के अंधे आंधी तूफान ने हमारे आत्म प्रकाश को आच्छादित कर दिया। सूर्य को बादल नहीं ढकते, बादलों की ताकत नहीं सूर्य के आगे खड़े भी रह सके, लेकिन सूर्य और हमारे बीच बादल आ जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा को कामना नहीं ढकती, लेकिन जीवात्मा को कामना ढक देती है। परमात्मा सामर्थ्य का पता नहीं चलता। बादल यहाँ दिखते हैं, हमको अंधेरा दिखता है, लेकिन 25 किलोमीटर दूर तो पूरा सूरज लोगों को देखता है। होता रहता है ऐसा।
तो सूरज को बादलों ने नहीं ढका, हमारी आंखों की जहां तक की कैपेसिटी है वहां तक या उससे और थोड़ा ज्यादा तक बादल है। ऐसे ही हर चित्त में कामना जितनी लंबी चौड़ी उतना ही आत्म सूर्य उनको कम दिखता है या नहीं दिखता है, जितनी कामना कम उतना ही उनका जीवन आत्म सूर्य आत्म प्रकाश में जीता है और उतना ही वे लोक संग्रह के कार्य में सफल होते हैं, उतने ही वे स्वस्थ रहते हैं, उतने ही वे प्रसन्न रहते हैं, उतने ही वो अपने और समाज के जीवन को उन्नत करने में सफल हो जाते हैं जो निष्काम और निर्मम है। स्वार्थी मनुष्य सोचता कि अपने काहे मळेगो, अपने काहे मळेगो, अरे जो मळेगो वे छूट जाएगो, अपने काहे मळेगो ये सोचना छोड़ दे, लोकारो भलो वेगो अपने काहे जोईजे नहीं, तो थोरने जो मळेगो वो तो दुनिया जानेगी काहे मळ्यो थने। निष्काम और निर्ममता से जो मिलता है वो सकामी और ममता वाले के भाग्य में कहां है। जितना जितना जीवन में निष्कामता आएगी निर्ममता आएगी उतना उतना जीवन भारहीन चिंता रहित वरीलेस ईगोलेस टेंशनलेस हैप्पीनेस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। निष्काम और निर्मम हुए बिना अकर्तव्य की भूल नहीं मिटेगी। जो बिन जरूरी है अकर्तव्य, अकर्तव्य करेंगे तो फल कड़वे आएंगे और कर्तव्य पालेंगे तो कड़वे फल मीठे आएंगे। जिस समय जो हमारा कर्तव्य है वो करते हैं तो फल मीठे आते हैं, लेकिन कर्तव्य की जगह पर अकर्तव्य करते तो फल कड़वे आते हैं। उस समय चाहे पता ना चले, समझो दिन है तो हमें काम करना चाहिए, नहाना धोना खाना पीना ये वो करना चाहिए, और रात्रि है तो सोना चाहिए, लेकिन रात्रि को खाएं पिए और धोएं कमाएं और दिन को सोएं सोएं तो वो मजा नहीं आता जीवन के तालबद्धता का। ऐसे ही जो काम जिस वक्त करना है अथवा जो काम जिसकी सत्ता से होता है उस सत्ताधीश को पहचानने के लिए निष्कामता आएगी, निर्ममता आएगी, उतना उतना आत्मबल बढ़ जाएगा। कामना किसी वस्तु की होती है, किसी अवस्था की होती है, किसी परिस्थिति की होती है। वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति की कामना होती है। अगर काम ममता भी वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति की होती है तो कामना और ममता वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति की होगी। अगर कामना से वस्तु व्यक्ति परिस्थिति मिली तो उसमें सुख बोध की सुख भोगने की इच्छा हुई तो हमें उसमें दास्ता आ जाएगी और सुख भोग की दास्ता हमारे आत्म सुख को दबा देगी। ये सुख भोग की दास्ता ये बदलियां है, आत्म सुख से वंचित कर देगी। वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति से जो सुख मिलेगा वो वस्तु भी हट जाएगी, व्यक्ति भी हट जाएगा, परिस्थिति भी बदल जाएगी। तो जो नहीं मिला था कामना पूर्ति, कामना के पहले जो स्थिति थी और कामना पूर्ति हो गई, कामना मिली कि वस्तु व्यक्ति परिस्थिति मिली आखिर हट गई, तो फिर हम वहीं पहुंच गए जहां थे, तो हमारा तो समय ही खराब हुआ और क्या हुआ। कामना होती वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति की, और ऐसी वस्तु मिल गई, ऐसी व्यक्ति मिल गई, ऐसी परिस्थिति मिल गई और उसके भोग में लग गए तो जड़ता पराधीनता और हीनता आ जाएगी। लेकिन वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की कामना नहीं किया, लेकिन वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का सदुपयोग किया। दुख की परिस्थिति आई तो सदुपयोग किया, सुख की परिस्थिति आई तो सदुपयोग किया, सुखद व्यक्ति आई तभी भी और दुखद व्यक्ति आई तभी भी, इनका जब सदुपयोग किया, मानो दुख आया या दुखद परिस्थिति आई या दुखद वस्तु आई तो उसका सदुपयोग किया तो साधन बन जाएगा। महाराज दुख का सदुपयोग कैसे करें, सुख का सदुपयोग तो समझ गए कि सुख अंदर ठांसने के लिए नहीं है, सुख बांटने के लिए है, तो सुख का सदुपयोग होने से आपका सुख व्याप्ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। लेकिन बड़ा होता जाए इस इच्छा से करोगे तो नहीं होगा। इच्छा छोड़ो, स्वभाव है। अच्छा, दुख का सदुपयोग कैसे? दुख पैरों तले कुचलने की चीज है, जहां तहां उसको रिपीट करने की या चिटकने की या सुनाने की चीज नहीं। दुख पैरों तले कुचलने की चीज है और सुख बांटने की चीज है, और परमात्मा साक्षी है और उसे पाने के लिए ही मेरा जीवन है, ऐसा समझेंगे तो वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति का सदुपयोग हो जाएगा। वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति का सदुपयोग ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा त्यों त्यों आप सत्य में टिकते जाएंगे। वस्तुएं बदलती जाएगी, आएगी तो भी ठीक है, चली गई तो तुम आबद्ध नहीं हो। व्यक्ति आई ठीक है, लेकिन चले गए तो तुम उस लिए परेशान नहीं हो। परिस्थिति आई ठीक है, उसका उपयोग किया, नहीं आई तो तुम परेशान नहीं हो। तुम्हारी परेशानी मिट जाएगी, तुम्हारा तनाव मिट जाएगा, तुम्हारा बंधन मिट जाएगा। तुम्हारे दुख के मूल ही हैं ये नासमझी से किए हुए गलत निर्णय ही दुख के मूल हैं, और ये गलत निर्णय मिटते हैं सत्संग से। तो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की आसक्ति न हो, निष्कामता और निर्ममता के सूत्र को याद करके कामना पूर्ति का सुख न ले, लेकिन कामना निवृत्त करने का ज्ञान बढ़ाए। कामना निवृत्त करने में हम स्वतंत्र हैं और कामना पूरी करने में हम परतंत्र हैं, और पूरी होने के बाद भी वो अवस्था वस्तु व्यक्ति और कामना की वस्तु मिट जाती है।